नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति हरे कृष्णा कृष्णा क्रम से 44वां श्लोक पढ़ रहा है लेकिन लिख दिया गया है 45वां तो जो लिखा गया है उसी की आवृत्ति करेंगे। 44वां है संदेश साधु लोकस्य कदने कदना प्रियान काम रूप धरान दीक्षु दानवान गृहमाविशत संदिश्य साधु लोकस्य कदने कदना प्रियान काम रूप धरान दीक्षु दानवान गृहमाविशत 45वां श्लोक लिखा गया है। हम 44वें की आवृत्ति कर रहे हैं।
45वां
तो आपने सुना है अश्विन लोग किस प्रकार कंस को अनुमति दे नहीं कंस को सुझाव दे रहे थे कि आपको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है तो हम लोगों को 10 दिन के अंदर के सभी बच्चों को या 10 दिन के ऊपर भी 1 महीने के लगभग बच्चे जो भी हैं उनको मार दिया जाए उसी में से विष्णु होगा और अंत में उन्होंने सुझाव दिया कि सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ देना चाहिए इसके लिए बहुत जरूरी है ऋषियों की हत्या। ये बात सुन करके कंस संदिश्य उनके प्रस्ताव पर राजी हो गया अनुमति दिया और दानवों को सभी दिशाओं में भेजा। मथुरा में मीटिंग हुई थी मथुरा से चारों दिशाओं में भेजा दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में और सबको आज्ञा दे करके उत्साहित करके वह राक्षस कंस अपने महल में चला गया। कथा इतनी ही है इस श्लोक में। दानवों के 2 विशेषण दिए गए हैं कदना प्रियान और काम रूप धरान। ये असुर जो कंस के मंत्री थे ये लोग कदना प्रियान ये दूसरों को सताने में परद्रोह में बहुत रुचि रखते थे। इनको प्रिय काम था दूसरों को मारना सताना दुखी करना और दूसरी विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी काम रूप धरान। वो जो भी रूप बनाना चाहते थे बना लेते थे अपनी इच्छा के अनुसार कंस को बहुत चिंता थी कि विष्णु मुझे मारने के लिए जन्म लेने लेगा, देवकी के यहाँ जन्म नहीं लिया, कहीं और जगह जन्म ले लिया, ऐसा माता दुर्गा ने कहा था। तो इससे वो बहुत घबराया था। तो मंत्रियों के प्रस्ताव पर उसने विचार किया, कहा कि सबसे पहले विष्णु कहाँ जन्म लिया है इसका पता लगाना है। तो उस सभा में उतना दीदी बैठी थी, तो उसी ने कहा हम जहाँ तक अनुमान करते हैं यदि विष्णु वसुदेव के यहाँ जन्म नहीं लिया, देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो अवश्य वो किसी वसुदेव के मित्र के पास जन्म लिया होगा। मैं अनुमान करती हूँ, सबसे बड़ा प्रमाण मैं बता रही हूँ, नंद को एक बच्चा हुआ है। मैं साक्षात देख करके आई और यहाँ भी बहुत से लोग सुने होंगे, मथुरा में आवाज आ रही थी, गोकुल यहाँ से दूर नहीं है, नंद के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, बहुत बड़ा फेस्टिवल। नंद ने 20 लाख गाय का दान दिया है, सभी गायों को रश्मी वस्त्र ओढ़ाए गए थे और उनके सिंह में स्वर्ण माला मढ़ा गया था और पैर में चांदी। कितना बड़ा धन खर्च किया। इस तरह से मैं पता लगाई हूँ। तो हमारा अनुमान है कि विष्णु देवकी के यहाँ जन्म नहीं लिया, तो अवश्य वो देवकी की सखी यशोदा के यहाँ जन्म लिया होगा। तो सबसे पहले इन दानवों को गोकुल भेजना चाहिए, वहीं विष्णु होगा। मैं एक बार एक नाटक देखा था, अयोध्या के एक संत नाटक का संचालन कर रहे थे, तो कृष्णावतार लीला दिखाए थे उतना उद्धार तक। उसमें पूछते हैं, उतना से कंस पूछा है तुम किस उपाय से नंद के लड़के को मारोगे। तो वह कहे कि मैं अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके जाऊंगी और बच्चों को दूध पिलाने का बहाना करूंगी, केवल मेरे स्तन का स्पर्श करने से वो मर जाएंगे। कंस ने कहा ठीक है, तो तुम उस गुपों से भरे हुए नंद भवन में कैसे जाओगे, वहाँ तो बहुत सी स्त्रियाँ होंगी, गोपियाँ होंगी। तो पुतना कंस को दिखा रही है, सुंदर रूप बना करके काम रूप धारण, बहुत सुंदर गोपी बनी। ऐसा सुंदर रूप कि कंस ने कह दिया ठीक है, तुम सबको मोहित कर सकते हो, सावधान रहना। यशोदा और रोहिणी को पता न लगे कि तुम मथुरा से आई हो। तो उसने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसे मोह में डालूंगी किसी भी गोपी को पता नहीं चलेगा। यशोदा तो बहुत भोली भाली है, उतना को ये भी पता हो गया था कि नंद के यहाँ वसुदेव का लड़का भी गया है जिसका नाम राम पड़ेगा, राम बलराम, और नंद का खास पुत्र जन्म लिया है। केवल उत्सव से पुत्र ने पता लगा लिया। कई दिन से उत्सव चल रहा है, 20 लाख गौए दान दी गई और पूरे ब्रजमंडल से समस्त ब्राह्मणों को बहुत भोजन दिया जा रहा है, बहुत सुंदर। तो मैं अनुमान करते हूँ राजन कि विष्णु वहीं जन्म लिया होगा। अतः आप हमको महावन में भेजिए, गोकुल में, मैं आपकी चिंता दूर कर दूंगी। शिशु रूप में विष्णु होगा तो मैं केवल दूध पिलाने का बहाना करके उसको मार डालूंगी। कंस ने कहा ठीक है, तुमको मैं इंचार्ज बना रहा हूँ। जमुना के किनारे जो भी गांव हैं गोपों के, वहाँ गौएं हैं, वहाँ जाओ और तुम्हारे लिए मैं ये जोर निश्चित कर रहा हूँ, पूर्व दिशा, मथुरा से पूर्व जो भी गांव है, उन गांव में जो भी नए बच्चे हैं तत्काल के जन्मे हुए सबको मार डालो। ये तो बहुत अच्छा उपाय बता रही है, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई अपने बच्चों को लेकर छिपा नहीं पाएगा और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। तो उस नाटक में एक जोकर था, वो बोला कि सरकार वहाँ जा करके पुतना देवी का कुछ होगा तब क्या करेंगे। तो कंस पूछता है, मैं नाटक देखा उसको कह रहा हूँ, क्या कहा, ठीक ठीक बोलो। मेरा कहने का है ये अर्थ है कि पुतना गई गोकुल जाएगी और कहीं इसी का कुछ हो गया तब क्या होगा, इसी का कुछ हो गया क्या हो गया। क्या हो जाएगा तो वो जोकर बोला कि कहीं वहाँ से इसकी लाश न आ जाए। तो बहुत से लकड़ी कफन आदि जुटा करके रखिए गए। तो कौन कहता क्या बक रहा है, चुप। जोकर को डांट दिया। धीरे से जोकर बोला विष्णु बहुत बलवान है, हमें तो उम्मीद है कि यही मर जाएगी। कंस डांटता है ऐसे शुभ समय पर मेरे शत्रु के विनाश होने के प्रस्ताव पर तुम ऐसे मत बोलो। मेरे शत्रु का उत्कर्ष वर्णन मत करो, ये निश्चित उसको मार कर आएगी। अपने दुश्मन का उत्कर्ष सुनना नहीं चाहते हैं असुर लोग। लंका में रावण की सभा में रावण जब विभीषण से पूछा कि अब विभीषण बताओ हमको क्या करना चाहिए, तो विभीषण जी बोले सरकार सबके अंदर सबके हृदय में शुभ विचार अशुभ विचार रहता है, सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, नाथ पुराण निगम से कहें। सारे पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं कि सबके अंदर सुमति कुमति आती रहती है। तो आपके हृदय में कुमति बसी है, सीता का आपने हरण किया, सीता को लौटा दीजिए। यह सुन करके रावण कहता है तुम हमेशा मेरे हमारे आश्रय में रहता है, हमारा खाया और बढ़ रहा है तपसी की, बेटर है तुम चले जाओ उसी के पास। इस प्रकार से राक्षस रावण विभीषण जी की बात नहीं माना। राम की प्रशंसा सुन करके वो जल जाता था। तो विभीषण जी माल्यवान के साथ विमान पर चढ़े और रावण को कह दिए अब आपका काल आ गया है, अब केवल आपका काल ही नहीं इस सभा में जितने लोग हैं सबका काल आ गया है, मैं जा रहा हूँ मुझे दोष मत देना। और विमान पर चढ़ करके सागर पार किए, आकाश मार्ग से और आ गए भगवान के पास। उस समय श्री भगवान समुद्र के किनारे कुछ सलाह कर रहे थे क्या किया जाए, इतना बड़ा पयोधि है इसको कैसे पार किया जाए। तो विभीषण जी चले गए थे वहाँ, उन्होंने बताया कि हे प्रभु ये आपका कुल गुरु है, ये समुद्र आपका कुल गुरु है, आपके पूर्वजों ने इसको खाना है। तो तो हमारे समझ से इससे विनय करके मांगना चाहिए रास्ता। भगवान ने ये सुन करके कह दिया, ठीक है आप हमारे लिए कुछ का आसन लाइए और मैं विनय करूँगा। तीन दिन तक भगवान ने विनय किया। वरुण देव का मंत्र पढ़ करके भगवान ने मांगा रास्ता, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दिया। अंत में लक्ष्मण जी क्रोध में हो गए, उन्होंने कहा कि क्या जड़ समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, आप क्रोध कीजिए और सुखिए समुद्र को। समुद्र को सुखा देंगे, आसानी से बानर भालू की सेना पार कर जाएगी। तब भगवान ने कहा ऐसे ही करूँगा, धैर्य रखो। उन्होंने धनुष बाण मांगा और पूजा छोड़ दिए और अग्नि बाण का संधान किए समुद्र के जल पर, समुद्र को सोखने के लिए। तब वरुण देवता घबरा गए, आए शरण में। क्योंकि समस्त जल के स्वामी वरुण देव हैं, तो समुद्र के भी वे स्वामी हैं। तो हाथ जोड़ करके आए और प्रणाम किए भगवान को, कहे हे नाथ आप क्रोध मत कीजिए। लक्ष्मण जी कहे क्रोध कीजिए और वरुण देव कहते हैं कि क्रोध मत कीजिए, आप तो समर्थ हैं। तो उसी समय वरुण देव ने कहा है कि जितने मूर्ख हैं और स्त्रियां, इनको बुद्धि नहीं होती है, आप क्षमा कीजिए हमको। एक प्रसिद्ध चौपाई है रामचरितमानस में, वो समुद्र का बोला हुआ है, वरुण देव का। वे कहते हैं कि स्त्री और मूर्ख मनुष्य और पशु सबको डंडा मारना चाहिए, ये डंडे से ठीक होते हैं। कैसे हो चौपाई है, ढोल गंवार शुद्ध पसुनारी, ये सब तारण के अधिकारी, ये वरुण देवता बोल रहे हैं कि हे प्रभु ये ढोल ढोलक और गंवार गांव का आदमी, गांव के आदमी को गंवार कहते हैं, ये मूर्ख बिना पढ़ा लिखा, तो ढोल ढोलक और गंवार मूर्ख पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इनको जरा ठोकना चाहिए तब ठीक रहेंगे। ऐसे ढोलक जब ठोका जाता है तब ऊपर आवाज देता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि ढोलक खूब पीटा जाए, थोड़ा हाथ से टपटपाते हैं, रस्सी कसते हैं तब आवाज़ निकलती है। ऐसे ही डांट डपट रखना चाहिए मूर्ख पर और स्त्री पर और पशु पर। पशु भी उचित बोलने से नहीं समझते हैं, जब उनको डंडा दिखाया जाता है तब ठीक से चलते हैं। तो कुछ है लोग तुलसीदास जी पर आक्षेप करते हैं कि इन्होंने स्त्रियों का पक्ष नहीं लिया, हमेशा स्त्रियों की निंदा करते हैं। लेकिन इस चौपाई पर विचार कीजिए, यदि ढोलक ठोकने से ठीक रहेगा, आवाज़ अच्छा देगा, स्त्री डांटने से ठीक से काम करेगी, और पशु डंडा दिखाने से ठीक रहेंगे, तो इसमें क्या अनुचित है। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति नहीं समझते हैं, लेकिन उनको डांटा जाए तब वे कुछ काम करेंगे। तो इस चौपाई में क्या पक्षपात है, जो सही बात है वही वरुण देवता बोल रहे हैं। उनके कहने का आशय था कि मैं मूर्ख हूँ, समुद्र के रूप में बोल रहे हैं, मैं मूर्ख हूँ, आप कृपा कीजिए। आप हमको सोखिय मत अग्निबाण से, उचित है कि आप सेतु का निर्माण कर लीजिए, पुल बना लीजिए, आपकी सेना में अपार वीर हैं, बानर बड़े बड़े, ये लाएंगे बहुत से चट्टान पहाड़। मैं इतना करूँगा कि अपनी लहरों से इन चट्टानों को, वृक्षों को हटाऊंगा नहीं। इसी पर ब्रिज का निर्माण कीजिए, सेतु का निर्माण कीजिए, तो मेरी मर्यादा भी रह जाएगी, आपका जस बढ़ेगा। जो भी राजा दिग्विजय करता हुआ यदि यहाँ आएगा तो आपका जस गाएगा, यह सेतु राम ने बांधा। तो इसलिए आप हमारी मूर्खता को क्षमा कीजिए, मैं प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। आप तो त्रिलोकनाथ हैं, ते ही उपाय कीजिए। समुद्र ने कहा वरुण देव के रूप में कि मैं अपनी लहरों से पत्थरों को, चट्टानों को इधर उधर तितर बितर नहीं करूँगा। यही है समुद्र का मार्ग दे देना। समुद्र ने मार्ग दे दिया तो श्री भगवान ने उसी मार्ग पर बहुत बड़ा सेतु बनाया, बहुत चौड़ा है और बहुत लंबा। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि 100 योजन लंबा था सेतु। सौ योजन मतलब 400 कोस, 800 मील। इतना बड़ा सेतु पर कहीं पिलर नहीं था। बानर भगवान की सेना अपार थी ना, सभी उस पुल पर चढ़ करके पार हुए भगवान के साथ। जब भगवान सेतु पर चल रहे थे तो उनको देखने के लिए जलचरों की भीड़ हो गई। बड़े बड़े मच्छ, मगर, तिमिंगल आदि ऊपर आ गए देखने के लिए भगवान को। इतना तन्मय हो गए कि डोल नहीं रहे थे। वो भी एक सेतु बन गया है जलचरों का। ये बहुत से बानर तो उछल उछल करके जलचर जीवों पर पार हो गए। इतनी संख्या थी बानरों की तो एक कंस का ने रावण का भेजा हुआ दूत वहीं जाकर के सुनाया कंस रावण को कि पदुम जथा 18 जूथबंध 18 पद्म तो सेनापति हैं बानरों के, युद्ध असमय श्रवण सुना दसकंद। मैं गिन नहीं पाया लेकिन मैं सुना हूँ, हे दशीस ध्यान देकर सुनो, बानरों की संख्या 18 पद्म है। 18 पद्म वो तो जूथप है, जूथ का हेड पालन करने वाले। पद्म समझते हैं ना, 1,00,000 बाद कोटि आता है, करोड़ के बाद अरब आता है। अरब के बाद खरब आता है, खरब का संघ महासंघ, और पद्म तो उसके बाद होता है। कितनी अपार संख्या हो, सारे देवता बानर का रूप धारण करके भगवान की मदद करने के लिए आ गए थे राम की सेना में। मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि उत्कर्ष शत्रु का सुनना नहीं चाहता। कंस ऐसे ही बलवान राक्षस था, तो कभी विष्णु की भगवान की प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, डरता था, उसको भय था कि हमको मार देगा विष्णु, तो इसीलिए सारा उपाय कर रहा। तो सभी दानों का कृत्रिम रूप देखना चाहता था। बकासुर को बुलाया, कहा कि हे वीर, तुम कौन सा रूप धारण करके जाओगे? वह तुरंत बहुत बड़े पक्षी के रूप में अपने को दिखाया, मैं बगुला बनकर के जाऊंगा और नंद की गायों को और नंद के पुत्र को और उसके सखाओं नष्ट कर दूं। फिर उसने वत्स को बुलाया, तुम कौन सा रूप धारण करोगे? तो वह बहुत बड़े बैल के रूप में, सांड के रूप में हो गए, बछड़े के रूप में दिखा रहा था। केवल सब लोग कंस को दिखा रहे थे कि मैं क्या उपाय करूँगा। अंत में अघ को बुलाया, तुम कौन सा उपाय करोगे? उसने कहा कि मैं समस्त गौओं को, गोपों को अपने मुख में पीस दूंगा, देखिए मैं कितना बड़ा रूप धारण करता हूँ। तो दिखाया कि मैं बहुत भारी पर्वत के रूप में ब्रज में जाऊंगा, इस प्रकार से कंस सबके काबिलियत की परीक्षा कर रहा था, देख रहा था। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं काम रूप धरा, वे सब राक्षस अपनी इच्छा से रूप धारण कर सकते थे। उसने धेनु को बुलाया, धेनु जी आप क्या करोगे? तो वो गधा के रूप में दिखाई पड़े, वो कहा कि मैं गधा बन करके जाऊंगा और सभी को दुर्गती से मार करके खत्म करूँगा। इस तरह से नाना दैत्यों को अनेक दिशाओं में भेज रहा, अनेक देश में, विशेष करके यमुना जी के किनारे जो भी गांव हैं उन गांवों में जो भी बच्चे हैं उनको मारने के लिए प्रथम बार प्रथम प्रस्ताव। सबसे ज़्यादा उसमें फिक्र थी कि विष्णु हमको न मारे, अपने मरने की चिंता थी कंस को। तो अंत में उसने यही कहा कि जब पुतना दीदी बता रही है कि नंद के यहाँ फेस्टिवल हो रहा है तो सबसे पहले इसी को भेजे हैं। बहुत प्रोत्साहित किया, ठीक है दीदी तुम जाओ, अब सावधान रहना, कोई तुमको पहचाने नहीं, भेद न खुले। और नंद के लड़के को मार करके आओ, हम भी अनुमान करते हैं कि वो विष्णु वहीं प्रकट हुआ होगा। उत्तर ने कहा कि आप आवाज सुने नहीं, गोकुल में कितना बड़ा उत्सव है, सहनाइयाँ बज रही हैं, बड़े बड़े मृदंग बज रहे हैं, आप तो केवल मरने की चिंता में शोक करते हैं, आप सुने नहीं। तो सभी दानों को उनके काबिलियत की परीक्षा करके कंस भेजा चारों दिशाओं में, उत्तर दिशा में मथुरा से जैसे खैरा है, बरसाने हैं, नंदगांव, इन सब स्थानों पर भेजा। पहले जमुना जी नंदगांव से होकर के आती थी, बरसाने से फिर गोवर्धन के चरण कमल को धोती हुई खैरा आती थी, और खैरा से फिर मथुरा। मथुरा के बाद जमुना जी फिर गोकुल होते हुए, मधुबन होते हुए दाऊ जी के तरफ बढ़ते हैं और फिर आगरा चले जाते। पहले सारे ब्रजमंडल को जमुना जी अपने रस से सींचती थी, अपने जल से सींचती थी, तो जमुना के तट पर बसने वाले जो भी गांव हैं वहाँ के लोगों को नष्ट करने के लिए कंस विशेष आज्ञा दिया पूरे ब्रजमंडल में। उतना को तो पूरब दिशा में भेजा, लेकिन इसके साथ ही अन्य राक्षसों को भी भेजा, पुत्रा को उसने कहा कि तुम कोई गांव छोड़ना नहीं, प्रत्येक परिवार में जाना, कोई भी बच्चा मिले उसको मार देना। ये गोप लोग पहाड़ों में रहते हैं, इनसे सावधान रहना। कोई कोई अपने बच्चे को छिपा करके रखें, पुत्र ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, विष्णु को मारना यही आपका उद्देश्य है ना, तो पहले मैं नंद भवन में जाऊंगी गोकुल में, और वहाँ नंद के पुत्र को मार दूंगी। आपका क्या अनुमान है, नंद के यहाँ इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, कई दिन से उत्सव चल रहा है, और हमें तो अनुमान है कि जिस दिन जिस रात्रि को इस रात्रि को आपने सुना देवकी का आठवां पुत्र नहीं हुआ, उसके बदले में वो कहीं दूसरी जगह जन्म लिया है, तो सारा अनुमान सारा गेस यही जा रहा है। जिसमें वसुदेव के मित्र नंद के यहाँ जन्म लिया हो, विष्णु जब मार दिया जाएगा तो सारे देवता निर्मूल हो जाएंगे, और किसी को मारना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मर जाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कंस बहुत स्वर से प्रोत्साहित करके पुतना को भेजा, गोकुल में बार बार कहा कि सावधान रहना गोपों से गोपियों से, कहीं पहचान ना आवे कि तुम पुतना हो। सुखदेव उसमें कहते हैं कि इस तरह से दिशाओं में और प्रत्येक दिशा में जो जो देश पड़ता था, जो जो गांव नगर, वहाँ सबको भेजा राक्षसों को, दानवान दीक्षु संदिश्य दिशाओं में भेज करके तब उसको थोड़ी शांति मिली, अपने महल में प्रवेश किया है। नहीं तो कंस को बहुत भारी चिंता थी, कई रात से सोया नहीं था, और आज की रात जन्माष्टमी की रात तो बिल्कुल नींद आई नहीं, केवल इसी चिंता में रहा कि हाय मैं मर जाऊंगा, दुर्गा जी की बात से थोड़ा सा चित्त बदला पर शांति नहीं हुई। माता दुर्गा जी ने तो साफ कह दिया, तुम बच्चों की हत्या मत करो, तुमको मारने वाला जन्म ले चुका। तो कंस के मंत्रियों ने ये सब अनुमान किया कि तो इसी ब्रज में जन्म लिया होगा, इसलिए सब दिशाओं में भेजने का मतलब है ब्रज में मथुरा के चारों तरफ भेज है। ये असुर कदन प्रिया दूसरों को सताने में बहुत अभिरुचि रखते थे। ऐसे परपीड़क परद्रोह का दूसरे से द्रोह करने वाले सताने वाले लोगों को सताने के लिए सरकार का आदेश हुआ। राजा डायरेक्ट कहा तो ठीक है, जाओ गांव गांव में बच्चों को मारो और गौओं को ब्राह्मणों को नष्ट करो। ये आदेश देकर के संदिश्य तब वह अपने भवन में प्रवेश किया। कई दिन से कंस के मंत्रियों की बात हम लोग सुन रहे थे। हमारे मन में अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी सुखदेव गोस्वामी का कहा हुआ है और असुरों की बातें अंततः भगवान की महिमा को व्यक्त कर रही थी, इसीलिए कहता गया। इस कथा का एक दिन और बाकी है। श्रील प्रभुपाद के पर्पोर्ट को पढ़ने पर मन में हो गया कि कथा कहनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है कि कभी असत्संग दुसंग नहीं करना चाहिए। कंस जो माता दुर्गा के बाद से ये सोचने लगा कि मैं बेकार हत्या कर दिया देवकी के छह पुत्रों, वही दुष्ट मंत्रियों की बात सुनकर के फिर हजारों बच्चों के वध की इजाजत दे दिया। एक ही व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जिस दिन देवकी का विवाह हुआ उसी दिन वह तलवार खींच लिया था देवकी का मस्तक काटने के लिए, पर श्री वसुदेव जी के समझाने से वो बदल गया। वसुदेव जी को बहुत परिश्रम करना पड़ा समझाने में। विवाह के अवसर पर सभी संबंधी जुटे थे, राजा कण भी जुटे थे और सबके बीच में वह देवकी का वध करना चाहते थे। उस विकट परिस्थिति में, इमरजेंसी में धैर्य रखे श्री वसुदेव जी अनंत में अपने वचन से उसको राजी कर लिए। वहाँ भी ये वर्णन है कि देवकी वसुदेव को प्रसन्न कर लिया और वसुदेव जी ने कहा ठीक है आप अपने घर जाइए। तो बदल गया, लेकिन कंस असुर था ना, उसके मन में चिंता रहती थी और देवकी जी को छोड़ दिया विवाह के बाद घर जाने के लिए। परंतु नारद जी के कहने से उसका चित्त बदल गया। जब उसने सुना कि देवता लोग मीटिंग किए हैं और विष्णु को मेरा वध करने के लिए उकसाए हैं, तब वह देवकी को कारागृह में पुनः डाल दिया पति के साथ। ये विचार हो सकता है भक्तों के मन में कि नारद जी ने ऐसा क्यों किया। नारद जी भगवान के मन के अवतार है, भगवान के मन में था कि कंस इस तरह से करे। तो वे आएंगे, नारद जी ने सोच लिया कि यदि देवकी वसुदेव को जेल में नहीं डाला जाएगा तो भगवान अवतार लेने में बहुत विलम्ब करेंगे, इसीलिए सबके हित के लिए उनको जेल में डाला जाए। नारद जी की इच्छा थी। नारद जी तो जानते थे कि भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे, अतः थोड़े काल के लिए दुख भोग लें और अंत में कंस का विनाश होगा ही। इस अध्याय के अंत में यही बात श्री सुखदेव गोस्वामी कहेंगे। सुखदेव गोस्वामी साप देते हैं ऐसे पर पीड़क दूसरों को सताने वाले का विनाश हो ही जाता है, खास करके यदि भक्तों को तंग किया जाए तो तंग करने वाले की आयु श्री जस स्वर्ग सब समाप्त हो जाता है। इसलिए अंतिम शिक्षा है कि महत्पुरुष का वैष्णवों का अतिक्रम नहीं करना चाहिए। अतिक्रम का अर्थ है उनको सताना नहीं चाहिए। भगवान के जो भक्त हैं भगवान को बहुत प्रिय है, वैष्णवों में कभी दोष नहीं देखना और उनको कभी अपमानित नहीं करना, सताने की बात तो दूर है, अभी भी उनको दुर्वचन नहीं बोलना और वैष्णवों को की थोड़ी भी सेवा जो की गई वो अमोघ होती है, उसका फल मिलता है। भले कुछ देर हो लेकिन वैष्णवों की सेवा का फल मिलता ही है। इसलिए शिक्षा है कि भक्तों की सेवा करनी चाहिए। कभी उनका अतिक्रम नहीं करना चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए। जय श्री प्रभुपाद।